بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔
زہرہ زیدی اور ساتھی ریڈیو تہران کے سبھی شروتا متروں کی سیوا میں سلام پرستت کرتے ہیں۔ شروتاؤں، آج بھی اپنے کارکرم کا آرمبھ ہم قرآن مجید کی پوتر آیتوں کی تلاوت اور ان کے انواد سے کر رہے ہیں۔ سورہ آل عمران کی آیت کرمانک 102 سے 104 تک کی تلاوت کر کے آج کے کارکرم کی شوبھا بڑھائی ہے قاری محمد صدیق منشاوی نے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون۔
صدق الله العظيم۔
اللہ کے نام سے جو اتینت کرپاشیل اور دیاوان ہے۔ ہے ایمان والو، ایشور سے ویسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنا چاہیے، اور مسلم رہتے ہوئے ہی مرنا، اور تم سب مل کر ایشور کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رہو اور بکھرو نہیں، اور اپنے اوپر ایشور کی اس وبھوتی کو یاد کرو جب تم ایک دوسرے کے شترو تھے تو اس نے تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے پریم جگایا، تو تم اس کی وبھوتی کی چھایا میں ایک دوسرے کے بھائی بن گئے، جیسا کہ تم نرک کی کگار پر تھے اور ایشور نے تمہیں اس سے مکتی دلائی۔ ایشور اپنی نشانیوں کو اس پرکار تمہارے لیے اسپشٹ روپ سے ورنت کرتا ہے کہ شاید تم لوگ مارگ درشت ہو جاؤ، اور تم مسلمانوں کے بیچ ایک ایسا گٹ ہونا چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کا نمنترن دے، اچھے کاریوں کی اور آمنترت کرے اور برائیوں سے روکے، اور ایسے ہی لوگ سفلتا پراپت کرنے والے ہیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، شروتاؤں میں ہوں احمد عباس، میرا سلام سویکار کیجیے۔ ہمارا پرسارن آپ شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ برابر 9510 کلو ہرٹز پر سن رہے ہیں۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے hindi@wsis.irib.ir۔ ہماری ویب سائٹ ہے parstudy.ir/hi۔ شروتاؤں، آج بدھوار ہے، شہریور کی 31، سفر کی 15 اور ستمبر کی 22 تاریخ۔ اس سمے کی سبھا میں سماچار، راجنیتک چرچا اور پوتر پرتیرکھا رکشا سپتاہ کے سمبندھ میں وشیش کارکرم اور کارکرم آج کل پرستت کیے جائیں گے۔ تو یہ ہے اس سمے کی سبھا میں پرستت کیے جانے والے کارکرموں کی روپریکھا۔ اب سے کچھ کھنوں بعد آپ سنیں گے انتراشٹریہ سماچار۔ یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے، لیجیے شروتاؤ سنیے انتراشٹریہ سماچار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پہلے آج کے مکھیہ سماچاروں کا سارانش۔ ایران کے راشٹرپتی نے کہا ہے کہ اگر آتنکواد کے خلاف لڑائی میں ایران نے سیریا اور عراق کا ساتھ نہ دیا ہوتا تو آج داعش یورپ کا پڑوسی ہوتا۔ ایران کے ودیش منتری نے اپنی نیو یارک یاترا میں مہتوپورن ملاقاتوں میں ایٹمی ڈیل، افغانستان کے حالات اور پارسپرک سمبندھوں کے بارے میں مہتوپورن وارتائیں کی۔ امریکہ کے راشٹرپتی نے کہا ہے کہ سینک شکتی آخری وکلپ ہوگا۔ بھارت کے پردھان منتری 5 دیوسیہ امریکہ یاترا پر روانہ ہو گئے۔ اور اب آپ وستار سے سماچار سنیے۔ ایران کے راشٹرپتی نے بل دے کر کہا ہے کہ اسلامی گڑتنتر ایران کی نیتی کھیتر کے سمست دیشوں کی سمپربھتا کی رکشا ہے۔ راشٹرپتی سعید ابراہیم رئیسی نے کہا کہ جو چیز سب سے ادھک وشو کی شانتی و سرکشا کو خطرے میں ڈال رہی ہے وہ راشٹروں کے ادھیکاروں کا ہنن ہے۔ آیت اللہ رئیسی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے مادھیم سے راشٹر سنگھ کی مہا سبھا کے 76ویں وارشک ادھیوشن میں بھاشن دیتے ہوئے کہا کہ امریکی لوگوں دوارا اس دیش کی کانگریس کی عمارت پر حملہ کرنے اور امریکی ویمانوں سے افغان ناگرکوں کو پھینکے جانے کی تصویروں کے جاری ہونے سے وشو میں یہ سندیش گیا کہ امریکی ویوستھا کا کوئی مہتو نہیں ہے، چاہے وہ دیش کے اندر ہو یا دیش کے باہر۔ راشٹرپتی نے کہا کہ راشٹروں کا پرتیرودھ بڑی شکتیوں کی شکتی سے ادھک شکتیشالی ہے، اور آج پشچم کی پہچان دوسروں پر تھوپنے کی یوجنا وفل ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے کچھ دشکوں میں امریکہ کی غلطی یہ رہی ہے کہ دنیا کے لوگوں کے ساتھ اپنی جیون شیلی پرورتت کرنے کے بجائے وہ دنیا سے یدھ کی شیلی بدلتا ہے۔ راشٹرپتی نے کہا کہ ایرانی راشٹر کا پرتیبندھ نہ پرماڑو کارکرم کے سمے سے اور نہ ہی اسلامی کرانتی کے سمے سے آرمبھ ہوا، بلکہ یہ پرتیبندھ ورش 1951 سے ایرانی تیل کے راشٹریہ کرن کے سمے سے آرمبھ ہوا ہے۔ راشٹرپتی نے کہا کہ ایران کا سجھاؤ اور پرستاؤ ہے کہ سواستھیہ اور پریاورن کو مانویہ وشے گھوشت کیا جائے، اور ساتھ ہی ان کے خلاف ہر پرکار کے پرتیبندھ کو نشیدھ مانا جائے۔ ایران کے ودیش منتری حسین امیر عبداللہیان، جو سنیکت راشٹر سنگھ مہا سبھا کے 76ویں ادھیویشن میں بھاگ لینے کے لیے نیو یارک کی یاترا پر ہیں، ایٹمی ڈیل، افغانستان کے حالات اور انتراشٹریہ سہیوگ کے وشیوں پر مہتوپورن ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने महासभा की बैठक में विदेश मंत्रियों और अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि अगर अमेरिका सारे प्रतिबंध खत्म करे और इसका सत्यापन हो जाए तो ईरान एटमी डील के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं पर अमल शुरू कर देगा। विदेश मंत्री अमीर अब्दुल्लाहियान ने यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रभारी जोसेफ बोरेल से मुलाकात में जोर देकर कहा कि ईरान परमाणु वार्ता में व्यवहारिक नतीजे की तलाश में है। उन्होंने कहा कि ईरान न तो समय बर्बाद करता है और न ही अमरीका के गैर सार्थक रवैये को सहन करने के लिए तैयार है। हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि ईरान झूठे दावे करने वाले देश के भरोसे हरगिज नहीं रहेगा। विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान ने जर्मनी के विदेश मंत्री हाइको मास से मुलाकात में कहा कि अमरीका को जान लेना चाहिए कि सारा लेन देन एक बार परमाणु समझौते में हो चुका है, इसलिए वियना में वार्ता किसी नए समझौते के लिए नहीं हो रही है, बल्कि एक ही उद्देश्य है कि अमरीका परमाणु समझौते के तहत अपनी प्रतिबद्धताओं की ओर लौटे और सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 2231 का पालन करे। ईरान के विदेश मंत्री ने स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्री इग्नाजियो कैसियस से मुलाकात में वियना वार्ता और एटमी डील के बारे में ईरान का रुख बयान किया और अमरीका की धूर्तता पर रोशनी डालते हुए कहा कि वाशिंगटन के पास अपने रवैये में सुधार के अलावा कोई चारा नहीं है। विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान ने भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात में आपसी सहयोग में विस्तार के लिए ईरान की तत्परता की घोषणा करते हुए दोनों देशों के बीच तरजीही बुनियादों पर व्यापार के समझौते और ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को अंतिम रूप देने की जरूरत पर जोर दिया। विदेश मंत्री ने ऑस्ट्रिया के अपने समकक्ष एलेक्जेंडर शालेनबर्ग से मुलाकात में अफगानिस्तान के ताजा हालात के बारे में बात की और व्यापक जनाधार वाली सरकार के गठन पर जोर दिया जो समस्त अफगान जनता का प्रतिनिधित्व करती हो। ईरान के गृहमंत्री ने ईरान इराक युद्ध शुरू होने की बरसी पर मनाए जाने वाले पवित्र प्रतिरक्षा सप्ताह के उपलक्ष्य में अपने संदेश में कहा कि पवित्र प्रतिरक्षा के वर्षों के अनुभव से साबित हो गया कि दुश्मनों के हमलों और दबाव का मुकाबला करने का एकमात्र रास्ता दुश्मन के प्रतिबंधों के मुकाबले में प्रतिरोध है और इसके लिए आंतरिक क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अहमद वहीदी ने कहा कि हमारी प्रतिरक्षा केवल साम्राज्यवादी शक्तियों के एकजुट मोर्चे के खिलाफ नहीं थी बल्कि ये ईरान के महान राष्ट्र की प्रतिरोध शक्ति और ईमान की ताकत की जगमगाहट भी थी। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने राष्ट्रसंघ की महासभा के वार्षिक अधिवेशन में कहा कि सैनिक शक्ति दुनिया की हर समस्या का आखिरी समाधान है। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस वक्त जरूरी होगा तभी अमेरिका सैनिक शक्ति का प्रयोग करेगा, परंतु सैनिक शक्ति का प्रयोग प्रथम नहीं बल्कि अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। जो बाइडेन ने अपने भाषण में एक अन्य भाग में कहा कि ईरान को परमाणु हथियार तक पहुंचने से रोकने के प्रति अमेरिका कटिबद्ध है। उन्होंने कहा कि हम गुटमाइजन एक के साथ डिप्लोमेटिक सहयोग और परमाणु समझौते में वापसी के लिए तैयार हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर ईरान भी इसी प्रकार का काम अंजाम दे तो हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ परमाणु समझौते में वापस आ जाएंगे। बाइडेन सरकार का दावा है कि वो वियना में होने वाली परमाणु वार्ता के माध्यम से समझौते में वापसी की भूमि प्रशस्त करना चाहती है। वियना में परमाणु वार्ता के अब तक 6 दौर हो चुके हैं और वार्ता में शामिल पक्षों का कहना है कि वार्ता में ध्यान योग्य प्रगति हुई है किंतु अब भी मतभेद बने हुए हैं। क्यूबा के विदेश मंत्री ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के वक्तव्यों की आलोचना करते हुए कहा कि बाइडेन सरकार दुनिया में शांति योजना पेश करने के लिए नैतिक योग्यता नहीं रखती। राष्ट्रसंघ की महासभा के वार्षिक अधिवेशन में जो बाइडेन के बयान की प्रतिक्रिया में क्यूबा के विदेश मंत्री ने ट्वीट किया कि बाइडेन सरकार के पास नैतिक योग्यता नहीं है कि वह राष्ट्रसंघ में मानव समाज के विकास और प्रतिष्ठा के लिए शांति योजना पेश करे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से मुलाकात करेंगे जहां परस्पर रुचि के विषयों पर विचारों का आदान प्रदान किया जाएगा। अमेरिका रवाना होने से पहले भारतीय प्रधानमंत्री ने एक बयान जारी करके कहा कि यह दौरा अमेरिका से रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने का मौका होगा। ज्ञात रहे कि जो बाइडेन ने अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ 20 जनवरी को ली थी, जिसके बाद से भारतीय प्रधानमंत्री के साथ उनकी 2 बार वर्चुअल बैठक हो चुकी है। 23 सितंबर को यानी कल भारत के प्रधानमंत्री अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से भेंटवार्ता करेंगे। ईरान और भारत की आर्थिक व्यापारिक सहयोग विस्तार बैठक आयोजित हुई, जिसमें दोनों देशों के वाणिज्य कक्ष के अधिकारियों और आयात व निर्यात के क्षेत्र में सक्रिय उद्यमियों ने भाग लिया। ये बैठक तेहरान के स्पिनास होटल में हुई, जिसमें दोनों देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देने के बारे में विचारों का आदान प्रदान किया गया। औद्योगिक अनुसंधान अंतर्राष्ट्रीय संस्था के प्रमुख सीना सेंजरी ने इस बैठक के बारे में कहा कि इस प्रकार की बैठकों के आयोजन से भारत ही नहीं बल्कि अन्य देशों के साथ भी व्यापार के विस्तार के उपायों को बेहतर बनाया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का कहना है कि अफगानिस्तान के नए शासक अपने देश के संयुक्त राष्ट्र संघ में पूर्व राजदूत के प्रत्यय पत्र को चुनौती दे रहे हैं और जारी हफ्ते जनरल असेंबली के शिखर सम्मेलन में भाग लेना चाहते हैं। अफगानिस्तान की सत्ता संभालने वाले तालिबान की ओर से ये मांग ऐसी स्थिति में की गई है कि जब अफगानिस्तान में अमेरिका और उसके घटकों की ओर से 9 सितंबर 2001 के बाद तालिबान सरकार की समाप्ति के बाद पिछले महीने तालिबान ने देश की सत्ता दोबारा हासिल कर ली है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवक्ता स्टीफन डोजारेक ने कहा कि महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को 15 सितंबर को वर्तमान समय के मान्यता प्राप्त अफगान राजदूत इसहाक जई की ओर से असेंबली के 76वें अधिवेशन के लिए अफगानिस्तान के प्रतिनिधिमंडल की सूची के साथ एक पत्र मिला है। प्रवक्ता के अनुसार पत्र में कहा गया है कि पूर्व अफगान राष्ट्रपति अशरफ गनी को 15 अगस्त को अपदस्थ कर दिया गया था और दुनिया भर के देश अब उन्हें राष्ट्रपति के रूप में स्वीकार नहीं करते और इसके वजह से इसहाक जई अब अफगानिस्तान के राजदूत नहीं है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रवक्ता ने कहा कि तालिबान के अनुसार वो संयुक्त राष्ट्र संघ का नया स्थायी प्रतिनिधि मोहम्मद सोहेल शाहीन को नामजद कर रहे हैं, जो कतर में शांति वार्ता के दौरान तालिबान के प्रवक्ता रहे हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों के अनुसार भारत और पाकिस्तान के बीच कई दशकों से चले आ रहे कश्मीर विवाद के समाधान की मांग की है। एपीपी के हवाले से पाकिस्तानी मीडिया में आने वाली खबर के अनुसार तुर्क राष्ट्रपति ने महासभा के 76वें अधिवेशन को संबोधित करते हुए जहां अनेक मुद्दों पर अपने देश का दृष्टिकोण बयान किया, वहीं कश्मीर मुद्दा भी उठाया और कहा कि हमारा स्टैंड यही है कि दोनों पक्षों के बीच वार्ता और संयुक्त राष्ट्र संघ के संबंधित प्रस्तावों के फ्रेमवर्क के तहत कश्मीर में 74 वर्षों से जारी विवाद को हल किया जाना चाहिए। एर्दोगान ने कहा कि कश्मीर समस्या के समाधान के लिए तुर्की कश्मीरियों के साथ है। पाकिस्तान सूचना मंत्री फुआद चौधरी ने आरोप लगाया है कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को भेजे जाने वाले धमकी भरे संदेश इंडिया से भेजे गए थे। बुधवार को इस्लामाबाद में गृहमंत्री शेख रशीद के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फुआद चौधरी ने कहा कि सरकार की ओर से अनेक अंतर्राष्ट्रीय टीमों को दी जाने वाली धमकियों की जांच से ये बात सामने आई है कि उनके ताने बाने इंडिया से मिलते हैं। और इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय समाचार समाप्त हुए।
ये तेहरान है इस्लामी गणतंत्र ईरान की आवाज।
राजनीतिक चर्चा।
राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है, मैं हूं अख्तर रिजवी। आज हम चर्चा करेंगे न्यूयॉर्क में बगदाद बैठक की समीक्षा।
Well, not exactly.
यमनी जनता की क्रांति की वर्षगांठ और अफगानिस्तान में बाकी मंत्रालयों के मंत्रियों के नामों का ऐलान।
तिजारत वजारत दे सरपरस्त पतोगा।
तो सबसे पहले न्यूयॉर्क में बगदाद बैठक की समीक्षा का विषय। न्यूयॉर्क में न्यूयॉर्क में बगदाद में होने वाली बैठक की समीक्षा हुई, जिसमें विभिन्न देशों के विदेश मंत्रियों, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि और कई देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए कामरान नजफजादे की रिपोर्ट, साथी कायम रिजवी की जबानी।
यहाँ पर न्यूयॉर्क में बगदाद बैठक की समीक्षा के उद्देश्य से एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में फ्रांस के विदेश मंत्री, यूरोपीय संघ के प्रतिनिधि के अतिरिक्त सऊदी अरब के प्रतिनिधि को भी देखा जा सकता है। ऐसा लगता है कि यह बैठक अमीर अब्दुल्लाहियान के लिए अन्य बैठकों की तुलना में अधिक महत्वपूर्ण थी, यहाँ तक कि जर्मनी के विदेश मंत्री के साथ बैठक से भी अधिक। जैसा कि ईरान के विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इस बैठक में विदेश मंत्री अब्दुल्लाहियान ने जर्मनी के विदेश मंत्री से कहा कि ईरान में नई सरकार ने सत्ता संभाली है और उचित है कि आप परिस्थितियों को समझते हुए नरम रवैया अपनाएं। यूरोप के बहाने अस्वीकार्य हैं। हम अपनी आंतरिक अर्थव्यवस्था को JCPOA से नहीं जोड़ेंगे। अमरीका को भी जान लेना चाहिए कि जो होना था वो सब कुछ परमाणु समझौते में हो गया। वियना में कोई नया समझौता नहीं होगा। हम अमरीका द्वारा वचनों को पूरा कराने को सुनिश्चित कराना चाहते हैं। हालांकि ये बातें क्रोएशिया के विदेश मंत्री, ऑस्ट्रिया के विदेश मंत्री और स्विट्जरलैंड के विदेश मंत्रियों के साथ दोहराई गयी। यहाँ तक कि यूरोपीय संघ के विदेशी मामलों के प्रभारी जोसेफ बोरेल के साथ भी। बोरेल मोगरीनी तथा उनसे पहले स्टेन के उत्तराधिकारी बने हैं। ये जवाब विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का है। जब उनसे ये पूछा कि इन मुलाकातों में मीडिया की नजरों से हटके कोई संदेश या कोई विवादित भेंटवार्ता थी, देखिए हमने कभी भी कोई काम ईरान की जनता की नजरों से छिपकर अंजाम नहीं दिया है। हम इसी परंपरा का अब भी पालन कर रहे हैं और आगे भी पालन करते रहेंगे। ईरानी प्रतिनिधिमंडल राष्ट्र संघ के एक हॉल में। अब तक मुलाकातों का केंद्र आर्थिक, कूटनीति और क्षेत्रीय तथा अफगानिस्तान की स्थिति ही रही है। ईरान के विदेश मंत्री कल इराक के राष्ट्रपति से मुलाकात करेंगे। न्यूयॉर्क से IRIB के लिए कामरान नजफजादे की रिपोर्ट।
यमनी जनता विभिन्न शहरों और प्रांतों में अपनी क्रांति की सफलता की 7वीं वर्षगांठ मना रही है। इस अवसर पर कई जगह कार्यक्रम आयोजित हुए, जबकि कई जगह पर प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। सना से IRIB के लिए सुल्तान सदह की रिपोर्ट, साथी मोहम्मद मेहदी की जबानी।
كل ابناء اليمن خرجوا في مختلف المحافظات احتشادا
يمني لوگ اس دیش کے وبھن پرانتوں اور چھیتروں میں اپنی کرانتی کی سفلتا کی ساتویں ورشگانٹھ منا رہے ہیں یہ کرانتی ایسے استھتی میں سفل ہوئی جب یمن کو آتی گرہنکاریوں کے حملوں کا بھی سامنا تھا
استمرار نهج الثوره اليمنيه
ایک یمنی ناگرک کہتا ہے کہ ہم 21 ستمبر کو سفل ہونے والی کرانتی کے اوسر پر بل دے کر کہتے ہیں کہ یمنی لوگ اپنی سمبھاوناؤں پر بھروسہ کر کے کرانتی کو سفلتا تک پہنچانے میں کامیاب ہوئے اس سمے ہم بل دے کر کہتے ہیں کہ آتی گرہنکاریوں کو یمن سے باہر نکالنے تک ہمارا سنگھرش جاری رہے گا
خرجنا اليوم لنعلن للملأ لنعلن للعالم
دوسرا یمنی ناگرک کہتا ہے کہ ہم باہر اس لیے آئے ہیں تاکہ دنیا کے سامنے اس بات کی گھوشنا کر سکیں کہ امریکہ اور اسرائیل کے ورچسو سے مکتی حاصل کرنے تک ہمارا سنگھرش جاری رہے گا ہماری کرانتی سمستا ودیشی اتی گرہنکاریوں کے خلاف ہے
هذا الخروج الكبير يجدد فيه الشعب
یمنی لوگوں نے بڑے پیمانے پر پردرشن کر کے ایک بار پھر بل دیا ہے کہ ان کی کرانتی نے اس دیش میں بھرشٹ سرکار کا انت کر دیا اور ان کی کرانتی ختم نہیں ہوئی ہے اور امریکہ، اسرائیل اور سعودی عرب جیسے دنیا کے ورچسو وادیوں کے خلاف جاری ہے یمنی سینا اور سرکشا بل کے جوانوں نے بھی یمنی لوگوں اور جنتا کی بھانتی ان پردرشنوں میں بھاگ لیا یمنی کرانتی کی سفلتا کے جشن مناتے رہیں گے ایک یمنی ناگرک کہتا ہے کہ ہم کرانتی کی سفلتا کا جشن منانے کے لیے آئے ہیں اس کرانتی نے یمنی لوگوں کو ورچسو سے مکتی دلائی ہے یمن کے اتی گرہیت چھیتروں کی آزادی اور اسی طرح زانی شاسن کے اتی گرہن سے فلسطینیوں اور بیت المقدس کی آزادی تک ہماری کرانتی جاری رہے گی
المحافظات اليمنية المحررة كلها خرجت من صعدہ
السعدہ الجوف الزمار اور الحدیدہ جیسے آزاد ہوئے یمن کے سمست پرانت بھب پردرشنوں و ریلیوں کے ساکشی تھے یہ وہ کرانتی ہے جو یمن کی راجدھانی سنا سے آرمبھ ہوئی اور اس نے یمنیوں کو مان سمان عزت اور سرکشا کو उपहार स्वरूप प्रदान किया राजधानी सना में ये स्क्वायर यमनियों की क्रांति की सफलता के 7वीं वर्षगांठ के भव्य प्रदर्शनों का साक्षी है सुल्तान सदा آئی آر آئی بی سنا.
اور اب چلتے ہیں افغانستان.
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے. اور آپ سن رہے ہیں کاریکرم راجنیتک چرچا. سماچاروں سے ایک قدم آگے بڑھتے ہوئے گھٹناؤں کی تہ تک پہنچنے اور وبھن آیاموں کو چھونے کی کوشش. کاریکرم راجنیتک چرچا.
افغانستان میں طالبان نے باقی منترالیوں کے منتریوں کے ناموں کا اعلان کر دیا ہے. ناموں کے اعلان کے بعد ساری اٹکلوں پر ویرام لگ گیا ہے. کابل سے آئی آر آئی بی کے لیے بہنام یزدانی کی رپورٹ, ساتھی سید میسم کی زبانی.
طالبان نے اپنی انتریم سرکار کے باقی کئی منترالیوں کے لیے منتریوں کے ناموں کا اعلان کر کے لگ بھگ اپنی سرکار کی گٹھن کی پرکریا کو پورا کر لیا ہے. لیکن ایک ویاپک راشٹریہ سرکار کے گٹھن کو لے کر وہ دیش اور ودیش میں اٹھنے والی مانگوں کو پورا کرنے میں ناکام رہے ہیں. افغانستان کے پنجشیر پرانت سے ویاپار منترالیہ کی ذمہ داری ایک تاجک حاجی نور الدین عزیزی سنبھالیں گے.
تجارت وزارت دے سرپرست پتوگا.
وشو سمودائے کی طالبان سے کچھ خاص مانگے ہیں. ان میں سے ایک ایسی سرکار کے گٹھن کی مانگ ہے جس میں عام جنتا کا پرتنیدھتو ہو.
دولت طالبان اصل انتظار نہ میرے بر فعلا چون دولت ہم شمول تشکیل نہ شد.
افغانستان کے معاملوں میں روس, چین اور پاکستان کے پرتنیدھیوں نے ایک دن پہلے طالبان کی انتریم سرکار کے پرمکھ سے ملاقات کی اور اس کے بعد پور افغان سرکار کے چیف ایگزیکٹو عبداللہ عبداللہ اور پور راشٹرپتی حامد کرزئی سے ملاقات کی. ایک ویاپک راشٹریہ سرکار کا گٹھن دونوں ملاقاتوں میں مکھیہ مدعا رہا. یہ ایسا مدعا ہے کہ جس کے کارن ابھی تک کسی بھی دیش نے طالبان سرکار کو اوپچارکتا پردان نہیں کی ہے.
حدودی یک یکونی ماہ بشہ کہ حکومت طالبان دے کابل حاکمیت دارد اما متاسفانہ تا فیلن.
طالبان سرکار کے گٹھن کو ایک سے ڈیڑھ مہینہ ہو گیا ہے لیکن کسی بھی دیش نے ابھی تک اسے مانیتا پردان نہیں کی ہے اور افغانستان راجنیتک الگاؤ کا شکار ہے. لیکن طالبان نے انتراشٹریہ استر پر مانیتا حاصل کرنے کے لیے دوہا استھت اپنے کاریالے کے ایک ادھیکاری کا نام سنیکت راشٹر سنگھ کو دیا ہے اور مانگ کی ہے کہ اسے راشٹر سنگھ مہا سبھا کے وارشک سمیلن میں افغانستان کا پرتنیدھی سمجھا جائے. اس بیچ افغانستان میں آرتھک استھتی دن پرتی دن خراب ہوتی جا رہی ہے. وشو سمودائے کی سہایتا رک گئی ہے, کاریالے بند ہیں اور کاروبار بھی لگ بھگ ٹھپ پڑا ہے. افغانستان کی جنتا کی ورتمان استھتی کو دیکھتے ہوئے طالبان نے وشو سمودائے سے مانگ کی ہے کہ مانویہ سہایتا کو راجنیتک معاملوں سے جوڑ کر نہیں دیکھا جائے. بہنام یزدانی, آئی آر آئی بی, کابل.
اور اسی کے ساتھ راجنیتک چرچا کا یہ کاریکرم یہیں پر سماپت ہوتا ہے. دوستوں, آپ سن رہے ہیں ریڈیو تہران کی ہندی سیوا. ہماری آج کی اس سبھا کے انت میں آپ سنیں گے کاریکرم آج کل, کنتو اس سے پہلے پرستوت ہے پوتر پرتیرکشا سپتاہ پر وشیش کاریکرم.
दोस्तों, पवित्र प्रतिरक्षा सप्ताह के अवसर पर विशेष कार्यक्रम लेकर आपकी सेवा में हाजिर हैं मरियम मेहरदादी और रविश जैदी का सलाम स्वीकार कीजिए.
دوستوں, ایران میں ہجری شمسی کیلنڈر کے چھٹے مہینے شہریور کی 31 تاریخ سے ساتویں مہینے مہر کی 6 تاریخ تک 7 دنوں کو पवित्र प्रतिरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है। इस उपलक्ष्य में 7 खंडों पर आधारित एक श्रृंखला आपकी सेवा में पेश कर रहे हैं। इन कार्यक्रमों में हम 8 साल तक जारी रहने वाली ईरान की प्रतिरक्षा के सामरिक, ऐतिहासिक और राजनीतिक महत्व की समीक्षा करेंगे। साथ ही 8 साल तक चले इस युद्ध से हासिल होने वाले कीमती अनुभवों, महान मूल्यों और ईरान की आज की ताकत और मजबूती पर इसके असर और दुश्मन की हर प्रकार की धमकी और खतरे से निपटने की ईरान की शक्ति का जायजा लेंगे।
तो आइए श्रृंखला की ये पहली कड़ी सुनते हैं। 8 साल की पवित्र प्रतिरक्षा ईरानी राष्ट्र के इतिहास के बेहद महत्वपूर्ण कालखंड का आईना है। इस 8 साल में ईरानी राष्ट्र ने बेमिसाल प्रतिरोध पेश किया और इराक के सद्दाम शासन के भारी हमलों का डटकर मुकाबला किया। वैसे ये केवल सद्दाम के हमलों का मुकाबला नहीं था, बल्कि उस जमाने में पूरी पश्चिमी ब्लॉक और साथ ही पूर्वी ब्लॉक इस युद्ध में सद्दाम के साथ खड़ा था। इसी तरह अनुमान लगाया जा सकता है कि इन 8 वर्षों में ईरान की जनता ने कितनी बड़ी ताकतों से लोहा लिया।
8 वर्षीय युद्ध इस दृष्टि से ईरानी जनता के पास एक बहुत बड़ी संपत्ति और बहुत बड़ी पूंजी है कि दुश्मनों और साजिशों की यलगार हो जाने की स्थिति में किस तरह प्रतिरोध किया जाए और किस तरह अपनी रक्षा की जाए, इसके उपाय इन अनुभवों के गर्त में मौजूद हैं।
ईरान में इस्लामी क्रांति सफल हुई तो इसके ठीक 19 महीने बाद इराक के सद्दाम शासन ने 21 सितंबर 1980 को ईरान पर यह युद्ध थोप दिया। ईरान के खिलाफ इस मूर्खतापूर्ण युद्ध में सद्दाम शासन को पूर्वी ब्लॉक और पश्चिमी ब्लॉक का भरपूर समर्थन हासिल था। सद्दाम को महाविनाश के बहुत से हथियार, यहाँ तक कि केमिकल हथियार भी इन ब्लॉकों से मिल गए थे। बहुत सारे शहरों पर सद्दाम ने मिसाइल बरसाए और हजारों की संख्या में बेगुनाहों की जान ली।
युद्ध शुरू होने के साथ ही दुश्मनों ने अपना पहला लक्ष्य यही निर्धारित किया कि वो ईरान में नव स्थापित इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था को उखाड़ फेंकेंगे। मगर जंग शुरू हुई तो 8 साल तक चली और इस युद्ध में दुश्मनों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा, जिसके बारे में उन्होंने पहले सोचा भी नहीं था। दुश्मनों को पूरा यकीन था कि सद्दाम को सामने रखकर जो योजना बनाई गई है वो हर हाल में सफल होगी और ईरान की इस्लामी लोकतांत्रिक व्यवस्था का काम तमाम हो जाएगा।
यही वजह थी कि जंग शुरू होने के अवसर पर दुश्मनों और साजिशकर्ताओं के अंदर बड़ी खुशी थी, लेकिन जैसे जैसे जंग आगे बढ़ी दुश्मनों के अरमानों पर पानी फिरने लगा। उन्होंने ये सोचा नहीं था कि ईरान, जहाँ नई नई क्रांति आई है, जहाँ नई नई शासन व्यवस्था गठित हुई है और जो अभी काफी कमजोर है, इतनी मजबूती और दिलेरी से प्रतिरोध किया जाएगा। मगर दुश्मनों के सपने और कामनाएं अलग चीज है और जमीनी सच्चाई अलग चीज है।
महान ईरानी जनता ने 8 साल की जंग में जिस प्रतिरोध का प्रदर्शन किया वो दूसरे राष्ट्रों के लिए मिसाल बन गया। ईरान ने इस बात की मिसाल पेश की कि जब वर्चस्ववादी दुश्मन लंबे लंबे सपने मन में सजाए हमले के लिए दौड़ पड़े और साथ ही साजिशों का पूरा जाल बिछा दे तो किन ताकतों और किन क्षमताओं के सहारे अपनी रक्षा की जा सकती है।
ईरान की इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामनाई 8 साल के युद्ध की उपलब्धियों के बारे में बताते हैं कि 8 साल के इस युद्ध से जानी और माली नुकसान बहुत हुआ, लेकिन ईरानी राष्ट्र को इस 8 साल की पवित्र प्रतिरक्षा में बड़ी उपलब्धियां भी मिली। ये उपलब्धियां भारी जानी व माली नुकसान से ज्यादा कीमती हैं। 8 वर्षीय युद्ध के अनुभवों से साबित हुआ कि ढेरों कठिनाइयों, समस्याओं और दबावों के बावजूद, आर्थिक संसाधनों की कमी के बावजूद, दुनिया की बड़ी ताकतों के गलत मांगों का डटकर मुकाबला किया जा सकता है। ایرانی راشٹر نے 8 سال تک پرتیرودھ کی جو مثال پیش کی اس سے اسلامی و غیر اسلامی دیشوں کے وچارکوں اور چنتکوں کے من میں یہ وچار مضبوط ہوا کہ پختہ ایمان ہو تو خالی ہاتھ بھی مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔
8 ورشیہ یدھ کے دور میں عجیب سا واتاورن پورے سماج میں چھایا ہوا تھا، ہر طرح بھائی چارے کا ماحول تھا، راشٹریہ گورو کی بھاونا پورے دیش میں چھلکتی نظر آتی تھی، دیش پریم ہر جگہ پربھاوت دکھائی دیتا تھا۔ یواؤں میں اتنا جوش اور اتساہ تھا کہ جنگ کے مورچوں کی اور بھاگے چلے جاتے تھے۔ ان ساری چیزوں نے جو ماحول پیدا کر دیا تھا ان میں یواؤں اور کشوروں، یہاں تک کہ بچوں میں بھی موت کے خوف نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ ہر کوئی دشمن کے مقابلے میں ڈٹ جانے اور بہادری سے لڑنے کی بات کرتا تھا، ڈر اور خوف کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ اس ماحول میں سپر پاور کا خوف بے ارتھ ہو کر رہ گیا تھا۔
حملہ ور دشمن کو دیش سے مار بھگانے کا جذبہ اور مورچوں پر بہادری کے ساتھ پرتیرودھ، یہ دو چیزیں بہت مہتوپورن تھیں جو پورے پوتر پرتیرکشا کے دور میں بہت اسپشٹ روپ سے نظر آئیں۔ ان دونوں چیزوں نے ایرانی جنتا کو ہر مورچے پر سفلتا دلائی اور ان کی مدد سے ایران یہ جنگ جیت گیا۔ اس بیچ ایرانی جیالوں نے جتنے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے وہ اپنے آپ میں اتہاس کا ایک مہتوپورن ادھیائے بن گئے۔ خرم شہر کی آزادی بہت بڑی گھٹنا ہے، یہ اپنے آپ میں بہت بڑا کارنامہ ہے۔ وشیشک اور سامرک وشلیشک اس گھٹنا پر بہت کو بول اور لکھ چکے ہیں۔ ان باتوں کو پڑھ کر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایران نے کس طرح اتنے بڑے فوجی کارنامے کو انجام دیا ہے۔
ایرانی جنتا نے پرتیرودھ کیا، قربانیاں دی، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایران کی سرکشا سنشچت ہوئی۔ ایران میں سامرک شیتر میں اپنی سرکشا سنشچت کی، ایران نے راجنیتک شیتر میں بھی اپنی سرکشا سنشچت کی اور دشمنوں کے آرتھک حملوں کا مقابلہ کرنے کی اپنی طاقت بھی بڑھائی۔ دشمن نے ہر آیام سے ایران کو نقصان پہنچانے اور کمزور کرنے کی کوشش کی، لیکن اسے بار بار ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ دشمنوں کی طرف سے یہ حملے اب بھی جاری ہیں، لیکن ایران اپنے آپ کو اتنا مضبوط کر چکا ہے کہ اب دشمنوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ ایران پر حملہ کریں۔ نشچت روپ سے ایران پر منوویگینک حملے کیے جاتے ہیں، پرچارک حملے کیے جاتے ہیں، لیکن سامرک حملے کی ہمت کوئی بھی نہیں کرتا، تو اس کی وجہ ایرانی جنتا کا پرتیرودھ ہی۔
اس سمے ایران کے خلاف جو ہتھیار استعمال کیے جا رہے ہیں ان میں آرتھک پرتیبندھ ہیں۔ ایران پر اتینت کٹھور آرتھک پرتیبندھ لگائے گئے ہیں۔ ایران کی سیماؤں کے قریب ہنسا اور اشانتی پھیلانے کی کوششیں لگاتار کی جا رہی ہیں۔ اس کے لیے ایران ورودھی طاقتوں کو استعمال کیا جا رہا ہے، جن کی منشا یہ ہے کہ لڑائی ایران کی سیما کے بھیتر پہنچ جائے۔ اسی ادیش سے علاقے میں جگہ جگہ آتنکواد کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے کہ ایران ان سنکٹوں میں الجھ جائے۔ اسی ادیش سے زیونی شاسن کی استھتی مضبوط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عرب دیشوں کو مجبور کیا گیا ہے کہ وہ اسرائیل سے اپنے رشتے بحال کریں۔ کچھ عرب دیشوں نے یہی کیا بھی ہے، لیکن یہ سب کرنے کے باوجود ایران کی سیما کے قریب حالات خراب کرنے کی سازشیں سفل نہیں ہوئی ہیں۔
آٹھ سال کے یدھ میں اپنے پرتیرودھ سے ایران نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ سرکشا کے وشے پر کوئی ڈھیل دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جہاں بھی اسے خطرہ نظر آتا ہے اسی خطرے کے انوپات میں اپنی سرکشا تیاریاں بڑھا دیتا ہے۔ ایران نے دراصل اس علاقے میں بہت سارے سمیکرنوں کو بدل دیا ہے۔ آج پشچمی ایشیا کے علاقے پر نظر ڈالی جائے تو آسانی سے محسوس کیا جا سکتا ہے کہ ایک نئی رڑنیتی اس علاقے میں ادے کر چکی ہے اور تیزی سے اپنی بنیادیں مضبوط کر رہی ہیں۔ یہ رڑنیتی باہری طاقتوں کے پربھتو سے خود کو نجات دلانے کی رڑنیتی ہے۔ ایران کا کہنا ہے کہ کھیتر کو اگر سرکشت اور شانت بنانا ہے تو یہ کام کھیتر کے دیش آپس سے مل کر سکتے ہیں۔ باہری شکتیوں کو اس میں ہستکشیپ کا موقع ہرگز نہیں دینا چاہیے۔
8 سال کے یدھ نے ایران کے بھیتر نہت بے شمار شمتاؤں کو پروان چڑھایا اور ساتھ ہی ایک نئی سوچ پیدا کی کہ آتم نربھرتا بہت بڑی دولت ہے۔ جو دیش آتم نربھرتا کو مہتو نہیں دیتے وہ واسطو میں دھوکے میں رہتے ہیں، اور جب کبھی انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے تو انہیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ انہوں نے کافی سمے گوا دیا ہے۔ اس لیے آتم نربھرتا کے اصول کو ہرگز اور کسی بھی حال میں بھولنا نہیں چاہیے۔ تو دوستوں، کاریکرم کا سمے یہیں پر سماپت ہوتا ہے، ہمیں انومتی دیں۔
یہ ریڈیو تہران کی ہندی سیوا ہے۔ ریڈیو تہران سچائی اور ان سب کی آواز جن کی آواز کوئی نہیں سناتا۔ تازہ سماچاروں اور سٹیک سمیکشاؤں کے لیے ہم سے جڑیے اور ہمیشہ جڑے رہیے۔ اور اب ریڈیو تہران کی ہندی سیوا کا اگلا کاریکرم۔
آج کل
دوستو، کاریکرم آج کل میں آپ کا سواگت ہے۔ مریم مہردادی اور رویش زیدی کا سلام سویکار کیجیے۔
دوستوں، آج کے کاریکرم میں ہم اس بات کی سمیکشا کریں گے کہ کھیتر میں ہونے والے یدھ اور اسرکشا میں امریکہ کی بھومیکا کیا ہے اور اس کا اصلی ذمہ دار کون ہے۔ تو دوستوں، موجود پرمان اس بات کے سوچک ہیں کہ ورش 2014 کے بعد پشمی ایشیا میں جو بہت سی لڑائیاں ہوئیں اور ہو رہی ہیں ان سب کا دشا نردیشن امریکہ اور اس کے گھٹکوں نے کیے ہیں۔ دوسرے شبدوں میں یہ امریکہ اور اس کے گھٹکوں کے پراکسی وار تھے اور ہیں۔ روچک بات یہ ہے کہ ان میں سے کچھ لڑائیاں اور یدھوں میں امریکہ نے سیدھی بھومیکا نبھائی ہے۔ ساتھ ہی امریکہ نے کھیتر کے دیشوں کو اربوں ڈالر کا ہتھیار بیچ کر خوب منافع کمایا ہے۔ البتہ کھیتر میں جو سنکٹ تھے اور ہیں اس میں امریکہ اکیلے نہیں تھا، سعودی عرب جیسے دیش بھی اس کے ساتھ ہیں۔ سرکاری آتنکواد کا پرتیک اسرائیل بھی امریکہ کا گھٹک ہے۔ 70 ورشوں سے ادھک سمے سے فلسطینی جنتا پر جو اتیاچار کیے جا رہے ہیں، جیسے فلسطینیوں کی نظروں کے سامنے ان کے مکان دھوست کیے جاتے ہیں، ان کی بچوں کی ہتیا کی جاتی ہے، ان کی بھومیوں پر قبضہ کیا جاتا ہے، ان کی کھیتیوں کو برباد کر دیا جاتا ہے، سب کا سب امریکہ پشچم اور ان کے گھٹکوں کے سنیکت شڑیتروں کا پرینام ہے۔
ایران کی اسلامی کرانتی کے سروچ نیتا آیت اللہ اہل عظما سید علی خامنئی پشچم ایشیا میں ہونے والی گھٹناؤں کی پرکریا کی سمیکشا کرتے ہوئے سنسار کے پریورتنوں اور شکتی کے سنتولن کو اسلامی جگت میں ہت میں بتانے और कहते हैं कि समस्त इस्लामी सरकारें और राष्ट्र फिलिस्तीन समस्या के बारे में जिम्मेदार हैं। सर्वोच्च नेता फिलिस्तीनी समाज के अंदर एकता बनाए रखने पर बल देते हुए कहते हैं, इस एकता का आधार घरेलू जिहाद और दुश्मन पर भरोसा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार फिलिस्तीनियों के असली दुश्मन यानी अमेरिका, ब्रिटेन और दुष्ट ज़ायनी शासन को फिलिस्तीनियों की नीतियों का आधार नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार इस्लामिक क्रांति के सर्वोच्च नेता का कहना है कि समस्त फिलिस्तीनी एक हैं और दबाव के समय में उन सबको एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। उन्होंने कुछ कमजोर और छोटे अरब देशों से संबंध सामान्य बनाए जाने हेतु ज़ायनी शासन के प्रयासों को इस शासन की कमजोरी का चिन्ह बताया और कहा कि इन संबंधों से ज़ायनी शासन को कोई लाभ नहीं पहुंचेगा, जैसा कि उसने दसियों साल पहले से मिस्र के साथ संबंध स्थापित कर रखा है और यह शासन बहुत कमजोर हो चुका है। इसी प्रकार ईरान की इस्लामी क्रांति के सर्वोच्च नेता अयतुल्लाह अल-उज़्मा सैयद अली खामनेई ने कहा कि अलबत्ता ज़ायनी शासन के साथ संबंधों से इन देशों को भी कोई लाभ नहीं पहुंचेगा, क्योंकि जब ये शासन उनके माल या जमीन का प्रयोग करेगा तो वो अशांति को हवा देगा।
राष्ट्रों और विभिन्न देशों में आने वाली क्रांतियों के अनुभव इस बात के सूचक हैं कि फैसला लेने और प्रतिक्रिया दिखाने से पहले दुश्मन और उसके लक्ष्यों को पहचानना जरूरी है। इसी तरह इस बात को भी जानना जरूरी है कि दुश्मन किस किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है, यानी उसके नुकसान पहुंचाने की शैली क्या है। इसी तरह दुश्मन के सकारात्मक और नकारात्मक बिंदुओं की पहचान भी जरूरी है। इस संबंध में जीवंत प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है कि अमेरिका और सऊदी अरब ने आतंकवादी गुटों के समर्थन में किसी प्रकार के संकोच से काम नहीं लिया। इससे इन देशों का लक्ष्य इराक, सीरिया, फिलिस्तीन, यमन और अफगानिस्तान जैसे क्षेत्रीय देशों और राष्ट्रों पर वर्चस्व जमाना है। वास्तविकता यह है कि पश्चिमी एशिया में जो युद्ध, हिंसा और असुरक्षा है, उसकी जड़ों को अमेरिका की सैनिक हस्तक्षेप की नीतियों में ढूंढना चाहिए। पश्चिम, विशेषकर अमेरिकी नीतियों और उसके कार्यक्रमों पर दृष्टि इस बात की सूचक है कि कुछ पश्चिमी देश, विशेषकर अमेरिका, पूरी दुनिया पर अपना वर्चस्व चाहते हैं और क्षेत्र के विभिन्न देशों में अमेरिका की जो सैनिक उपस्थिति है उसे इसी परिप्रेक्ष्य में देखा जा सकता है। क्षेत्र में अमेरिका के जो वर्चस्ववादी लक्ष्य हैं, इस्लामी गणतंत्र ईरान उन्हें बहुत अच्छी तरह पहचानता और उनके मुकाबले में अदम्य साहस के साथ डटा है और पूरी दुनिया, विशेषकर क्षेत्रीय देशों ने शांति व सुरक्षा स्थापित करने में इस्लामी गणतंत्र ईरान की रचनात्मक भूमिका को देख लिया है। दूसरे शब्दों में युद्ध, हिंसा और असुरक्षा का माहौल बनाकर अमेरिका क्षेत्रीय देशों व राष्ट्रों पर वर्चस्व जमाना चाहता है, जबकि इस्लामी गणतंत्र ईरान अमेरिका सहित हर देश के वर्चस्व का मुखर विरोधी है और वो शांति व सुरक्षा स्थापित करने के लिए प्रयास करता रहता है। इस्लामिक गणतंत्र ईरान का मानना है कि क्षेत्रीय देशों में सुरक्षा क्षेत्रीय देशों के सामूहिक प्रयास से होनी चाहिए। क्षेत्र के बाहर के देशों के हस्तक्षेप से न केवल सुरक्षा स्थापित नहीं होती बल्कि असुरक्षा में वृद्धि होती है।
अफगानिस्तान की स्थिति को जीवंत प्रमाण के रूप में देखा जा सकता है। वर्ष 2001 में अमेरिका ने आतंकवादी संगठन अलकायदा से मुकाबले और शांति व सुरक्षा स्थापित करने के बहाने अफगानिस्तान पर हमला किया था, परंतु 20 वर्षों के बाद बड़े अपमान के साथ अमरीकी और नेटो सैनिकों को अफगानिस्तान से जाना पड़ा। रोचक बात यह है कि न तो आतंकवादी संगठन अलकायदा समाप्त हुआ और न ही अफगानिस्तान में शांति स्थापित हुई। दुनिया में सबसे अधिक मादक पदार्थों की खेती और तस्करी अफगानिस्तान से होती है और अफगानिस्तान में विदेशी सैनिकों की उपस्थिति के दौरान इन पदार्थों की खेती और तस्करी में कई गुना की वृद्धि हो गई है। यहाँ इस बात का उल्लेख भी जरूरी है कि अफगानिस्तान के जिन क्षेत्रों में विदेशी सैनिक तैनात थे वहीं इन पदार्थों की खेती में अधिक वृद्धि हो गई। बहरहाल क्षेत्र में विदेशी सैनिकों की उपस्थिति युद्ध व अशांति का मूल कारण है और जब से विदेशी व अमरीकी सैनिक अफगानिस्तान से गए हैं तब से वहां शांति व सुरक्षा स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं और इस्लामी गणतंत्र ईरान के अधिकारियों ने बारंबार बल देकर कहा है कि क्षेत्र में सुरक्षा की आपूर्ति क्षेत्र से बाहर के देशों के हस्तक्षेप के बिना क्षेत्रीय देशों के सहयोग से होनी चाहिए और जब तक विदेशियों का हस्तक्षेप समाप्त नहीं होगा तब तक क्षेत्र में शांति व सुरक्षा स्थापित नहीं हो सकती।
ईरान की इस नीति को अमेरिका और पश्चिमी देश अपनी वर्चस्ववादी नीति के मार्ग की बहुत बड़ी रुकावट समझते हैं और ईरान को बदनाम करने के लिए दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप का आरोप भी लगाते हैं, जबकि वास्तविकता बिल्कुल विपरीत है। यानी अमेरिका और पश्चिमी देश दुनिया के विभिन्न देशों के आंतरिक मामलों में सैन्य और गैर सैन्य हस्तक्षेप करते हैं और डेमोक्रेसी स्थापित करने का भी दावा करते हैं। अफगानिस्तान के परिवर्तन और हालात इस बात के सूचक हैं कि डेमोक्रेसी का आयात दूसरे देशों से नहीं किया जा सकता। दूसरे शब्दों में पश्चिम और अमरीकी डेमोक्रेसी का कोई खरीदार नहीं है। अगर पश्चिम और अमरीकी डेमोक्रेसी का कोई ग्राहक होता तो वहां पर तालिबान अपनी इच्छा की सरकार स्थापित न करते। अमरीकी सैनिक जो आतंकवाद का मुकाबला करने और शांति व सुरक्षा स्थापित करने के बहाने आए थे अपने किसी भी लक्ष्य को हासिल न कर सके। यही नहीं, न केवल अफगानिस्तान में शांति व सुरक्षा स्थापित नहीं हुई बल्कि जब तक अमेरिका व विदेशी सैनिक अफगानिस्तान में मौजूद थे हजारों अफगान नागरिक मारे गए। मारे जाने वालों में बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं। बहरहाल विश्व समुदाय के सदस्य देशों विशेषकर क्षेत्रीय देशों की जिम्मेदारी है कि वे अफगानिस्तान में युद्ध और अशांति के कारक को पहचानें और इस संबंध में अपनी जिम्मेदारियों का निर्वाह करें।
यहाँ इस बात का उल्लेख जरूरी है कि जो देश या जो सरकारें अमेरिका पर भरोसा करती हैं उनका अंजाम सबके सामने है। एक समय था जब इराक के पूर्व तानाशाह सद्दाम को पश्चिमी देशों और अमेरिका के समर्थन प्राप्त थे, पर उन्हीं पश्चिमी देशों और अमेरिका ने सद्दाम की तानाशाही सरकार का अंत कर दिया। इसी तरह ट्यूनेशिया और मिस्र जैसे कुछ देशों में अमेरिका और पश्चिम की समर्थक सरकारें थीं, परंतु इन देशों में आने वाली जनक्रांतियों ने वहां के शासकों को उखाड़ फेंका और अमरीकी समर्थन इन शासकों के कोई काम न आया। यही नहीं, अमेरिका और पश्चिम का सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों से बड़े मधुर संबंध है, जबकि इन देशों में डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज भी नहीं है और अमेरिका और पश्चिम स्वयं को डेमोक्रेसी का प्रतीक समझते हैं। इन देशों में जो सरकारें हैं उनके क्रियाकलापों पर अमेरिका और पश्चिमी देश कभी भी न तो आपत्ति करते हैं और न ही कभी वहां डेमोक्रेटिक सरकार स्थापित करने की बात करते हैं। वास्तव में अमरीका और पश्चिमी देश डेमोक्रेसी के दावे में सच्चे हैं तो सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे देशों में डेमोक्रेसी की बात क्यों नहीं करते? वास्तविकता यह है कि अमरीका और पश्चिमी देशों को डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं है, उन्हें केवल उनके हित पसंद है। यानी उन्हें उनके हित चाहिए, ये हित उस देश में हो जहाँ डेमोक्रेसी हो या डेमोक्रेसी नाम की कोई चीज न हो। रोचक बात यह है कि सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात वे देश हैं जिन्होंने मानवाधिकार के हनन में किसी प्रकार के संकोच से काम नहीं लिया है। सऊदी अरब की अगुवाई में बने गठबंधन के पाशविक हमलों में अब तक दसियों हजार यमनी मारे जा चुके हैं। सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात न केवल गरीब देश यमन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर रहे हैं बल्कि वर्ष 2015 से यमन के खिलाफ अपने पाशविक हमलों को जारी रखे हैं और मानवाधिकार की रक्षा का दम भरने वाले देश कभी भी इन देशों के हमलों की न तो भर्त्सना करते हैं और न ही यमनी लोगों विशेषकर महिलाओं और बच्चों की हत्या की निंदा करते हैं। यही नहीं, मानवाधिकार की रक्षा का दम भरने वाले देश, यमन पर हमला करने वाले देश यानी सऊदी अरब और संयुक्त अरब इमारात को आधुनिकतम हथियारों से लैस भी करते हैं।
बहरहाल इस्लामी गणतंत्र ईरान ने अपने व्यवहार से दर्शा दिया और सिद्ध कर दिया कि अतिवाद और आतंकवाद से मुकाबले में उसने किसी प्रकार के प्रयास में न तो संकोच से काम लिया है और न लेगा, और वो अफगानिस्तान सहित क्षेत्र के हर देश में शांति व सुरक्षा की स्थापना के लिए अनवरत प्रयास करता रहेगा। ईरान कभी भी युद्ध और हिंसा का समर्थक व पक्षधर नहीं रहा है, और जब भी जरूरी हुआ उसने अतिवादी और अशांति उत्पन्न करने वाले तत्वों से मुकाबला किया। आज सीरिया और इराक में आतंकवादी तत्वों और इनकी विध्वंसकारी गतिविधियों से मुकाबला करने में ईरान रचनात्मक भूमिका किसी से छिपी नहीं है, और अब पूरी दुनिया विशेषकर इराक, सीरिया और अफगानिस्तान के लोग शांति व सुरक्षा स्थापित करने पर आधारित अमरीकी दावे की वास्तविकता को पहले से अधिक बेहतर ढंग से समझ गए हैं। सारांश ये कि क्षेत्र में अशांति व असुरक्षा और आतंकवाद के विस्तार का मूल कारण अमरीका है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अनुमति दें।
दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो तेहरान की हिंदी सेवा, और प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचारों का सारांश। ईरान के राष्ट्रपति ने कहा है कि अगर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में ईरान ने सीरिया और इराक का साथ न दिया होता तो आज दाइश यूरोप का पड़ोसी होता। ईरान के विदेश मंत्री ने अपनी न्यूयॉर्क यात्रा में महत्वपूर्ण मुलाकातों में एटमी डील, अफगानिस्तान के हालात और पारस्परिक संबंधों के बारे में महत्वपूर्ण वार्ताएं की। अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा है कि सैनिक शक्ति आखिरी विकल्प होगा, और भारत के प्रधानमंत्री 5 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना हो गए हैं। दोस्तों, हमें आशा है कि हमारा यह प्रसारण भी आपको सदा की भांति पसंद आया होगा। कार्यक्रमों के बारे में अपने विचारों एवं प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। हमारा ईमेल आईडी है hindi@ws.irib.ir। हमारी वेबसाइट का पता है parstoday.ir/hi। इसी के साथ अख्तर अब्बास और साथियों को अनुमति दें। खुदा हाफिज़।